الحمد لله وكفى، والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سورة بقرہ کی 102 نمبر آیت. اب یہاں سے اللہ رب العزت ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اس کی تفصیلات، اس کی ڈیٹیلز، اس کے عقائد ٹھیک کر رہے ہیں. اور وہ واقعہ یہ ہے کہ یہودیوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام پہ ایک بہتان لگایا تھا، ایک ایلیگیشن لگایا تھا، اور وہ یہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نعوذ باللہ جب آخری عمر میں تھے تو انہوں نے کفر کیا تھا، انہوں نے بتوں کو پوجنا شروع کر دیا تھا، اور دوسرا ان پہ ایلیگیشن یہ تھا کہ وہ جادو کرتے تھے، وہ جادوگر تھے. تو یہ بہت بڑا بہتان تھا ان پہ. تو دونوں چیزوں کو اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر صحیح کیا. پہلی چیز تو یہ کہ وہ جادوگر کیوں کہتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کو. وہ جادوگر اس لیے کہتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کو کیونکہ وہ جب دیکھتے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت بہت بڑی ہے، کیونکہ ان کی پوری دنیا پہ بادشاہت تھی، تو ان کو کسی نے کہا یا کتابوں میں لکھا ہے کہ کیونکہ ان کی حکومت کے اندر شیطان، جن اور انسان دونوں تھے، تو اس لیے جنہوں نے ان کو کہا انسانوں کو کہ یہ ایکچولی ساری قوت ان کی جادو کی وجہ سے، اگر اور لوگوں سے کہا کہ تم بھی جادو سیکھ لو تو ان کی طرح تم بھی بادشاہت حاصل کر سکتے. تو دنیا کی محبت لوگوں کے اندر تھی، جب ایسا غرب کوئی بتا دیں کہ جس کے ذریعے سے دنیا کی بادشاہت مل سکتی ہے، تو اب اگر انسان کے اندر دنیا کی محبت زیادہ ہو تو پھر انسان یہ نہیں دیکھتا کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، اس جائز ہے، ناجائز ہے، اللہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. پھر انسان ہر صورت اس کو کرنے کی سوچتا ہے کہ کسی طرح میں اس چیز کو کر لوں اور اس چیز کو حاصل کر لوں. تو انہوں نے اس چیز کو سمجھتے ہوئے کہ یہ جادو کے ذریعے سے چل رہی حکومت، تو جادو سیکھنا شروع کر دیا. حالانکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تو اللہ کا ایک معجزہ تھا، اللہ کی طرف سے انہیں ایک طاقت دی گئی تھی جس سے وہ زمین و آسمان پہ حکومت کر رہے تھے، ہر چیز پہ حکومت کر رہے تھے. لیکن عام انسان اس چیز کو ڈیفرینشیٹ نہیں کر سکتا کہ جادو کیا ہے اور معجزہ کیا ہے، تو وہ اس کو جادو سمجھتے رہے اور انہوں نے پھر جادو سیکھنا شروع کر دی. تو اس کے متعلق اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ اور یہ بنی اسرائیل ان منتروں کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کے زمانے میں شیاطین پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا تھا، البتہ شیاطین لوگوں کو جادو کی تعلیم دے کر کفر کا ارتکاب کرتے تھے. تو یہ اللہ رب العزت نے بات واضح کی کہ یہ لوگ تھے کہ جو کہ جادو کے پیچھے پڑے تھے، اور انہوں نے شیاطین سے یہ سے ہیلپ لی تھی ان جادو کو سیکھنے میں. تو یہاں پہ یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ جادو کیا چیز ہے آخر، اور شریعت میں اس کا کیا سٹیٹس ہے. تو پہلی چیز تو یہ کہ جو جادو یا سحر جس کا ورڈ ہے قرآن پاک میں یوز ہوتا، اس کا مطلب ہوتا ہے، یعنی کہ لٹرل میننگس، وہ ڈکشنری میننگس جو ہے، کہ ایسی کوئی چیز، ایسا کوئی اثر جس کا سبب ظاہر نہ ہو، کاز ظاہر نہ ہو، افیکٹ تو سامنے ہو کہ یہ ہو رہا ہے لیکن اس کا کاز کیا ہے وہ اس کے سامنے انسان کا نہ ہے، تو اس کو لٹرلی ڈکشنری میننگ میں جادو کہتے ہیں، سحر کہتے ہیں. اب وہ سبب कुछ भी हो सकता है। वो ऐसा भी हो सकता है कि मतलब कि कुछ चीज वाकई की जाए, उसका असर जाहिर हो, अकल उसको मानने से इनकार करे। फॉर एग्जाम्पल कोई जुमला बोला जाए, उसका असर जाहिर हो जाए और अकल उसको मानने से इनकार करे, तो उसको भी जादू कह सकते हैं। फिर एक ये है कि कलमा भी नहीं, कुछ भी नहीं है, लेकिन ऑल ऑफ सडन एक चीज जाहिर होना शुरू हो जाए, तो वो भी जादू के जुमरे में आती है। यानी ऐसी जो चीज जिसका सबब इंसानी अकल तस्लीम ना करे कि इस सबब से ये होगा, आमतौर पर वैसा ना होता हो, इस लिए अकल उसे तस्लीम करने से इनकार कर दे, तो उसको जादू डिक्शनरी मीनिंग्स में कहा जाता है। लेकिन कुरान पाक जो अल्फाज ये सहर का यूज करता है, वो एक्चुअली खास तौर पे उस जादू के लिए है जिसमें शयातीन शैतानों से मदद ली जाती है, कि शैतान से मदद ले के जादू किया जाता है, और ऐसे कोई इफेक्ट दिखाए जाते हैं जो कि इंसानी अकल नहीं मानती। क्योंकि असरात तो होते हैं अल्फाज में, कुरान पाक में भी एक असर है, कुरान पाक के अल्फाज में असर है, सूरह फातिहा को शिफा कहा गया कि इसको पढ़ के शिफा हासिल होती है, तो सूरह फातिहा में भी असरात है, लेकिन ये नूरानी असर है, अल्लाह ताला के कलाम में असर है। तो जादू उसको तब कहेंगे या सहर उसको तब कहेंगे जब शैतान की मदद से कोई चीज़ ऐसी जाहिर की जाए जो कि नहीं होती, वरना जो जो सारी ये चीज़ें हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी शो कर रहे हैं, उनको भी वो जादू इसलिए समझ रहे हैं कि इनका सबब नहीं है, हालांकि वो मौजदे के अंडर आ रही है। इसी तरह वलीउल्लाह से करामत जाहिर होती है, तो मौजदा करामत ये अलहदा चीज़ है, वो उसमें भी कॉज नहीं होता और इफेक्ट होता है, वो अल्लाह की तरफ से। लेकिन यहां पे मसला ये है, जादू के अंदर कॉज होता है लेकिन अकल उसे तस्लीम नहीं करती, और खास तौर पे जब शैतान की मदद से, शैतान उसको उस कॉज का को जनरेट करने का सबब होता है, उस सबब को जनरेट करने का सबब होता है, तो उसको जादू कुरान कहता है, सिहर कहता है। तो दो ब्रॉड कैटेगरीज हैं, यानी कि ऐसे इफेक्ट जिसका कॉज ना हो। एक है मौजदा करामत जो अल्लाह की तरफ से बज़ाहिर जाहिर होता है, और दूसरा है जिसका कॉज कुछ होता है लेकिन अकल उसे तस्लीम नहीं करती। मिसाल के तौर पर सूरह फातिहा का पढ़ना और मिसाल के तौर पर शयातीन का की मदद से कुछ करना। तो इन सारों में जो चौथी चीज़ है उसको जादू कहते हैं, सेहर कहते हैं कुरानिक टर्म में, वो उसकी ये सारी बात हो रही है। अब शैतान की वजह से क्या किया जाता है, तो शैतान उसकी बस उसका लुब्बे लुबाव या उसका कंक्लूजन इतनी सी बात है कि शैतान को खुश किया जाता है, और जब वो खुश होता है तो वो अपने आप को सरेंडर करता है, अपने आप को पेश करता है उस शख्स के सामने कि आप मुझसे क्या काम लेना चाहते हैं। उसके पास जो कुव्वतें हैं जो इंसान के पास नहीं है, वो उसको यूज करके कई बार ऐसे काम करता है जो इंसान के लिए अनयूजुअल होते हैं, तो इंसान उसको समझता है कि ये अनयूजुअल चीज़ है, तो उससे वो उसके लिए वो जादू का जादू होती है, हालांकि उसके पीछे शैतान की कुव्वत होती है। अब शैतान को खुश करने के लिए, और जाहिर सी बात है कि उसको खुश करने के लिए शैतानी काम ही किए जाएंगे, कोई रहमानी काम या अल्लाह को खुश करने वाले काम कभी शैतान को खुश नहीं कर सकते। तो उसको खुश करने के लिए मुख्तलिफ तरीके लोग अडॉप्ट करते हैं, मिसाल के तौर पे कुरान पाक की बेहरमती करना, कुरान पाक को गंद से लिखना, कुरान पाक की यानी कुरान पाक की वो मल्टीपल तरीकों से बेहरमती करना, और इसी तरह शैतान को खुश करने के लिए और बहुत सारे काम वो करते हैं। जब शैतान खुश होता है तो अपने आप को पेश करता है कि मुझसे क्या काम लेना है, तो वो उसको काम बताते हैं। अब शैतान ऑब्वियसली हर कुव्वत तो नहीं रखता, तो जितनी वो कुव्वत रखता है वो उसको उसकी हेल्प करता है। इसी तरह कुछ नजूमी होते हैं, वो शैतान को खुश करके उससे कहते हैं खबर पत्र लेके आओ आसमानों से कि आगे क्या होने वाला है, ताकि हम लोगों को बताएं। तो वो पार्षद को एक खबर ले आता है, अब उसको वो खुद ब खुद उसको और इन्हेंस करके आगे लोगों को बता देते हैं, उनमें से तो कुछ हो जाता है कुछ नहीं होता, तो जो हो जाता है तो उससे लोग इम्प्रेस हो जाते हैं कि देखे इसने ऐसा बता दिया, आगे की फ्यूचर की बात बता दी। तो शैतान की मदद से जो भी काम किया जाए वो शरीयत ने उसको मना किया, और उसकी कोई उसकी वजह बिल्कुल जाहिर है, बिल्कुल आया है कि शैतान को खुश करने के लिए शैतानी काम किया जाएगा जिसका अल्लाह ताला कभी अलाउ नहीं कर सकते, अल्लाह ताला उसे कभी खुश नहीं हो सकते। अब वो अकीदे के हिसाब से भी किया जा सकता है कि अकीदे में किसी को अल्लाह के साथ शरीक करना, और कोई अमली तौर पे भी किया जा सकता है जिसने बताया कुरान की बेहरमती करना वगैरह, तो दोनों कुफर के अंदर आते हैं, यानी अल्लाह के साथ शिर्क कर लेना किसी तरह का, या कुरान قرآن پاک کی بے حرمتی، یہ عملی طور پہ عقید شرک کر لینا، یہ دونوں شرک کے اندر آتے ہیں، کفر کے اندر آتے ہیں. اس لیے جادو کو سیکھنا، جادو کو سکھانا، یہ والا جادو جس کی بات ہو رہی ہے، اور اس کو کرنا، یہ سارے کفر ہیں. لیکن جو چیز یعنی جنات و شیاطین کی مدد کے بغیر نہیں کی جاتی، بلکہ قرآن و سنت کی اصطلاحات، قرآن و سنت کی الفاظ کے ساتھ کوئی اثر کیا جاتا ہے، جس طرح ابھی بتایا سورہ فاتحہ کا پڑھنا یا اس طرح کی کوئی اور چیز، تو اس میں اس کی الاؤنس ہے، اس کی اجازت ہے، وہ حرام نہیں ہے. لیکن اس کے اندر بھی یہ چیز ضرور دیکھ لینی چاہیے کہ اس کے تھرو بھی، یعنی قرآن و حدیث کی سٹیٹمنٹس کی آیات و احادیث کے تھرو بھی اگر کسی کو نقصان دینے کا اندیشہ ہو، نقصان ہونے کا اندیشہ ہو، یا نقصان دینے کی نیت ہو، تو اس صورت میں یہ بھی حرام ہو جائے گا. تو کون سی کیٹیگری صرف حلال رہے گی؟ کہ قرآن و حدیث کے تھرو اور دوسرے کی خیر کے لیے کوئی کام کر لینا، یہ صرف وہ واحد کیٹیگری ہے جو الاؤڈ ہے. باقی ہر کیٹیگری، خواہ وہ شیاطین کے ذریعے، جنات کے ذریعے سے ہو، یا وہ قرآن و حدیث کے ذریعے سے ہو، لیکن دوسرے کو نقصان دینے کے لیے ہو، تو یہ ساری چیزیں حرام ہوں گی. صرف ایک کیٹیگری الاؤڈ رہ جائے گی، اور وہ ہے جو قرآن و حدیث کے تھرو اور دوسرے کو نفع دینے کے لیے کی جائے. اب یہاں پہ یہ بات بھی ذہن میں واضح ہو جانی چاہیے کہ معجزے اور جادو کا فرق کیا ہے، کیونکہ وہ لوگ جادو کو اور معجزے میں فرق نہیں کر سک رہے تھے یہودی. تو آخر ان میں کیا فرق ہے؟ تو جو ان میں فرق یہ ہے کہ بظاہر ایک عام بندے کو دیکھنے میں دونوں انیوژل کام لگتے ہیں، دونوں کے پیچھے کوئی سبب نہیں ہوتا، لیکن ایکچولی جو ماہر ہیں جادوگر، ان کو پتا ہے کہ جادو کے پیچھے اسباب ہوتے ہیں، یعنی پیچھے کاز ہوتا ہے، وہ شیطان ہو، وہ کوئی جملہ ہو، وہ کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، عام بندے کو نہیں پتا چلتا. لیکن معجزے کے پیچھے کوئی کاز نہیں ہوتا، انسانی کاز، وہ اللہ کی طرف سے ڈائریکٹلی کیا جا رہا ہوتا. تو یہ وہ فرق ہے جو ایک اسپیشلسٹ ماہر پہچان سکتا ہے، عام بندہ نہیں پہچان سکتا. تو پھر عام بندہ کیا پہچان سکتا ہے؟ وہ یہ پہچان سکتا ہے کہ جو معجزہ جن سے ظاہر ہوتا ہے یا جن سے کرامت ظاہر ہوتی ہے، وہ صلحاء نیک لوگ ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ شریعت و سنت کے مطابق ان کی زندگی ہوگی، کبھی اللہ کے خلاف نہیں کریں گے، اخلاقیات ان کی اچھی ہوں گی، ان کا ظاہر باطن ہر چیز سنت کے مطابق ہوگی. تو یہ وہ چیز ہے جو عام بندہ آبزرو کر سکتا ہے. اور اس کے دوسری طرف جو لوگ شرک کرتے ہیں، جو لوگ جادو کرتے ہیں، تو وہ کبھی قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہو سکتے، نہ ظاہر میں یا نہ باطن میں. اگر ظاہر بنا بھی لیں تو ان کی زندگی کے اندر نہیں نظر آئے گی شریعت و سنت. تو یہ وہ چیز ہے جس کو عام بندہ آبزرو کر سکتا ہے اور اس سے وہ ڈیفرینشیٹ کر سکتا ہے. لیکن ڈیٹیل میں کہ جادو اور معجزے میں کیا فرق ہے، وہ اسے ماہر سمجھ سکتا ہے جس کو پتا ہو کہ جادو کے پیچھے کچھ اسباب ہوتے ہیں اور معجزے کے پیچھے کوئی اسباب نہیں ہوتے. اسی لیے یہاں یہ بات بھی سمجھ آ جانی چاہیے، اسی لیے قرآن کو جب معجزہ اللہ تعالیٰ نے قرار دیا کہ قرآن کی کوئی مثال نہیں لا سکتا، کیونکہ جتنے بھی اس کے ایسی زبردست لٹریچر کے جتنے بھی اس کے کازز ہیں، وہ نہیں پائے جاتے تھے. مطلب کہ کاز کیا ہے کہ جو جو جس کی زبان سے وہ الفاظ نکل رہے ہیں یا جو وہ پیش کر رہا ہے لٹریچر، وہ ماہر ہونا چاہیے اس لٹریچر کا. یعنی دنیا میں کبھی ایسا نہ ہوا کوئی لٹریچر کا زبردست لٹریچر پیش کر دے، اس نے کبھی کچھ پڑھا نہ ہو، کبھی کچھ سیکھا نہ ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا. تو کاز جو پہلا کاز تھا، وہی نہیں پایا جا رہا اچھے لٹریچر کا، اور وہاں پہ بھی عام بندہ نہیں فرق کر سکتا تھا. عربوں میں بھی جو ماہر تھے، انہوں نے اس چیز کو جان لیا تھا کہ یہ جو پیش کر رہے ہیں، یہ انسانی کلام نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایک تو پہلی بار انہوں نے کچھ پڑھا نہیں، اور دوسرا کا پڑھا بھی ہوتا تو ایسے الفاظ جس میں اتنے زیادہ خوبیاں ہوں، وہ انسان کی بس سے باہر ہے. تو اس لیے وہ اپنے ماہروں کے پاس جاتے تھے کہ آپ بتائیں، آپ اس کا جواب دیں. تو وہ کہتے تھے ہم نہیں دے سکتے اس کا جواب. تو کہنے کی بات یہ کہ ماہر جان سکتا ہے معجزے اور جادو کا فرق، عام بندہ اس کو صحیح طرح نہیں سمجھ سکتا. لیکن عام بندہ کیا سمجھ سکتا ہے؟ عام بندہ ان کی اخلاقیات، ان کی زندگی، ان کی دینداری، ان کی ظاہر باطن کو دیکھ سکتا ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر اور باطن को हर शख्स जानता था और उस पे कोई उंगली नहीं उठा सकता था इवन नबूत से पहले भी। तो ये एक आम बंदे के लिए दलील थी कि ये अल्लाह के नबी हैं और ये अल्लाह के मौजा जाहिर हो रहे हैं, ये उनकी अपनी जाती कलाम नहीं, उनके जुबान से निकल रहा। तो यही कन्फ्यूजन यहूदियों में भी थी कि क्या ये मौजा है या ये जादू है। तो उनके जहन में ये जादू उनके जहन में आया। और फिर दूसरी चीज, जब शैतान ने उनको कहा, जिन्नात ने कहा कि तुम इसके जरिए से दुनिया को हासिल कर सकते हो, अब दुनिया की मोहब्बत उनके दिल में थी, इस्लाह कल्ब नहीं हुई थी, तज़किया नहीं हुआ हुआ था, तो दुनिया की मोहब्बत के पीछे उस जादू के सीखने सिखाने में लग गए। तो अल्लाह ताला ने उनको उनको मुखातिब करके ये कहा कि बनी इसराइल इन मंत्रों के पीछे लग गए थे सुलेमान इस्लाम की सल्तनत के जमाने में, शैतान से सीख, ये शैतान पढ़ा करते तो ये उन्हें सीखते थे। और फिर कहा कि सुलेमान इस्लाम ने कोई कुफर नहीं किया था। तो उस दोनों कुफर का इनकार के जो उनकी किताबों में मेंशन था कि आखिर में नऊज़ु बिल्लाह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम काफिर हो गए थे, उसका भी इनकार किया। और ये कुफर भी, यानी जादू के जरिए से जो कुफर किया जाता है, उसका भी अल्लाह ने इनकार किया कि उन्होंने कोई कुफर नहीं किया। और अगली बात अल्लाह ने की, अलबत्ता शयातीन लोगों को जादू की तालीम देकर कुफर का इर्तिकाब करते थे। तो ये शयातीन थे जो लोगों को जादू सिखा रहे थे, ये कुफर करते थे क्योंकि उसमें शयातीन को खुश किया जाता था, उनके जरिए से जादू किया जाता था। अब यहां पे एक और बात भी नोटेबल है, वो ये कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ने कहा इन्होंने कुफर नहीं किया। अब ये अल्फाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से अदा हो रहे हैं। अब मुशरिकीन मक्का, यहूदी, ईसाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ये भी ऑब्जेक्शन करते थे कि आपने जो कुरान पेश किया ये सुनी सुनाई बातें, यानी कि आप जाते हैं दूसरे लोगों के पास, उनकी किताबें पढ़ते हैं, ईसाइयों की, यहूदियों की, और जो वाकयात वहां से मिलते हैं आप आके सुना देते हैं अपने अल्फाज। तो यहां से उसका भी रद्द होता है कि अगर ऐसा होता तो बाकी सारी किताबों में यही बात मेंशन थी, ईसाइयों की भी, यहूदियों की, हज़रत सुलेमान इस्लाम ने कुफर किया और जादू करते थे। अब ये बात अब अगर किताबों से पढ़ के बताई जाती तो वहां पे भी वही बात मेंशन होती। अब यहां पे अल्लाह ताला ये बात जिक्र कर रहे हैं कि उन्होंने कुफर नहीं किया। तो ये एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की भी दलील है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस उन वाकयात के अंदर गलत बातों को भी सही किया इन आयात के अंदर अल्लाह ताला की तरफ से। और फिर आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि वमा उन्ज़िला अलल मलकैन बिबाबिल हारूत व मारूत وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ وَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ। تو اللہ رب العزت نے صرف یہاں تک بات نہیں رکھی اس کانسیپٹ کو صحیح کرنے کے لیے، یعنی کہ یہودیوں کے زمانے میں یہ صرف بتا دیا جائے کہ یہ کفر یہ نہیں کر رہے سلیمان اسلام، بلکہ لوگ کر رہے ہیں، یہاں تک بات نہیں رکھی، بلکہ بعد اس سے آگے بڑھائی، بلکہ لوگوں کی تربیت کے لیے ایک اور کام کیا کہ دو فرشتے منتخب کیے، ان کا نام ہاروت اور ماروت تھا، وہ انسانی شکل انہوں نے اختیار کی، لوگوں کے اندر آئے اور لوگوں کے اندر آ کے اس بات کو ایکسپلین کیا۔ اور وہ کیسے ایکسپلین کیا کہ انہوں نے آ کے جادو سکھانے شروع کر دی لوگوں۔ یہ دیکھ، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب طریقہ اپنایا لوگوں کی تربیت کے لیے، جادو سے منع کرنا ہے، کانسیپٹ صحیح کرنا ہے کہ یہ جادو نہیں ہے سلیمان علیہ السلام کا، بلکہ یہ ان کا معجزہ ہے، لیکن اس کا طریقہ کیا اختیار کیا کہ دو فرشتے چوز کیے، ان کو انسانی شکل دی، لوگوں میں جا کے رہو اور ان کو جا کے جادو سکھاؤ۔ اب اس میں کیا حکمت تھی؟ پوری کی پوری حکمت اس میں یہ تھی کہ جب انہوں نے جا کے انہیں جادو سکھائے، تو اب ظاہری بات ہے کوئی شخص آئے اور کہے کہ جادو مجھے سکھائیں، تو اس کے لیے وہ سکھاتے تھے اس کے لیے یہ کلمہ ہے، یہ اس طرح کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے، تو یہ اثر ظاہر ہوگا۔ دوسرے لفظوں میں وہ کیا سکھا رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ جادو بغیر کاز کے نہیں ہے، اس کے پیچھے کازز ہوتے ہیں، پھر اس کے افیکٹ ظاہر ہوتے ہیں، اس کے پیچھے اسباب ہوتے ہیں، پھر اثر ظاہر ہوتا ہے۔ تو یہ تربیت کرنی تھی کہ تم سمجھتے ہو جادو کے جو تمہیں نظر آتا ہے اس کے پیچھے کوئی کاز نہیں ہوتا، وہ ایسے ہی ہو جاتا ہے۔ تو انہیں سکھانے کا مقصد یہ تھا کہ تمہیں سکھا کے یہ بتاتے ہیں کہ اس کے پیچھے کاز دیکھو کتنی کچھ کرنا پڑتا ہے پھر جادو کا اثر ظاہر ہوتا ہے، اور سلیمان علیہ السلام ایسا کچھ نہیں کر رہے، तो उनका ये जादू नहीं है, उनका ये मौजदा है। तो इंसानों को तरबियत कर दी कि तुम जो कंफ्यूजन में हो कि जादू और मौजदा मिलती जुलती चीजें, ऐसी बात नहीं है। जादू के पीछे बहुत मेहनत होती है, बहुत उसके पीछे असबाब होते हैं, उसके बाद असर जाहिर होता है, वो भी तुम्हारी अकल में ना आए। मौजदे में ऐसा कुछ नहीं होता। अब ये सिखाने के लिए उनके अंदर जाके जादू सिखाया गया, लेकिन साथ ये भी बता दिया, चूंकि जादू कुफर है, जादू का, और वो मिसयूज भी इसको करते थे, तो इसलिए दोनों तरफ से उनकी तरबियत भी की कि देखो सिर्फ जादू जो हम सिखा रहे हैं उसका मकसद सिर्फ ये है कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, लेकिन अगर तुम जादू को सीखोगे और आगे करोगे तो तुम गुनहगार होगे, तुम कुफर करोगे। तो ये एक ड्यूल उनकी तरबियत थी, एक तरफ तो उनको उनका कॉन्सेप्ट सही करना, दूसरी तरफ उनको तरबियत करना कि दुनिया की मोहब्बत में ऐसे अंधे नहीं होते कि उसके लिए हर चीज करने को तैयार हो जाते हैं, बल्कि जायज अहाते के अंदर, जायज तरीकों के अंदर रहते हैं। तो यही अल्लाह बात ताला ने यहां पे ये बात कही कि नीज ये बनी इसराइल उस चीज के पीछे लग गए जो शहर बाबुल में हारूत और मारूत नामी दो फरिश्तों पर नाजिल की गई थी। ये दो फरिश्ते किसी को इस वक्त तक कोई तालीम नहीं देते थे जब तक इससे ये ना कह दें कि हम महज आजमाइश के लिए भेजे गए हैं, लिहाजा तुम जादू के पीछे लगकर कुफर इख्तियार ना करना। फिर भी ये लोग उनसे वो चीजें सीखते थे जिसके जरिए मर्द और उसकी बीवी में जुदाई पैदा करें। तो ये अल्लाह ताला ने वाजे कर दिया कि मैंने दो फरिश्ते भेजे, हारूत और मारूत, बाबुल उस शहर का नाम था, ये इराक का एक शहर था, तो वहां पे ये सारा कुछ हुआ। तो वहां पे इन दो फरिश्तों को भेजा और अल्लाह ताला ने कहा कि उन्होंने जो तालीम थी जादू की, तो वो पहले ये बताते थे कि देखो इसका नुकसान है, इसका सिर्फ खास मकसद है कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट ठीक हो जाए, तो इससे आगे ना बढ़ना, ऐसा ना करना कि जादू करना शुरू कर देना। तो उन्होंने वादे कर दिया, लेकिन लोगों ने उसका इस्तेमाल किया और कुफर किया, और उसका इफेक्ट क्या होता था उस जादू का जो उन्होंने सिखाया कि मियाँ बीवी में जुदाई करा देते थे, तलाक करा देते थे, सेपरेशन करा देते थे उस जादू के जरिए। तो यहाँ पे और भी कुछ बातें वाजे हो जाती हैं। एक ये कि ऐसे उलूम हासिल किए जा सकते हैं कि जिससे कई बार नुकसान का भी अंदेशा होता है, लेकिन उसको हासिल करने में एक लिमिट सिर्फ ये होती है कि उसमें बड़ा मोहतात होकर उसको इस्तेमाल करना होता है। इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे कोई बाइबल पढ़ना शुरू कर दे और उसका मकसद ये हो कि मैं बाइबल या कोई और जो दूसरी किताबें पढ़ के उनका जवाब दो, उनके कॉन्सेप्ट सही करो, ये उसका मकसद हो, लेकिन अब उसको मोहताज होना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि वो बाइबल को पढ़ के या वो कोई और किताब पढ़ के इंप्रेस होकर वही रिलीजन अपना, तो वो कुफर में चला जाए। इसीलिए अवामुन नास के लिए मना है कि वो कोई और बुक ना पढ़े, क्योंकि वो उनके कॉन्सेप्ट खराब हो सकते हैं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो ये रवायत मिलती है कि एक बार हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने तौरात के सफ़े लेके जा रहे थे, तो पूछा ये क्या कहा है, तौरात के सफ़े में इसको पढ़ रहा हूँ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने शदीद गुस्से में आ गए कि बाज़ रवायत में आता है कि लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को देख के, इतना लाल हो गया चेहरा कि उसको देख के अंसार निकल आए तलवार लेके, किसने इतना गुस्सा चढ़ाया। तो बाद में वाकई पर चला कि ये वाकया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क्या मैं काफी नहीं हूं तुम्हारे लिए, कि अगर मूसा अलैहि सलाम भी आज होते तो वो मुझ पे ईमान लाए बगैर उनकी निजात ना होती, तो तुम किस तलाश में हो। तो इससे मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन ने यही मसला निकाला कि ये है जब इंसान उसको पढ़ के गुमराह होने का उसे अंदेशा हो, कि हो उसको पढ़ के कोई भी ऐसा लिटरेचर जिसको पढ़ के इंसान हक से हटने का उसको अंदेशा हो, तो वो उसको मना है। और ये आमतौर पर अवाम नास कॉमन पीपल के लिए होता है, लेकिन उलमा जिनको तहकीक हो चुकी होती है अपने रिलीजन की, अपने कि वो डेप्थ में जा चुके होते हैं, अपने अकीदे और ईमान को पुख्ता कर चुके होते हैं, तो कई बार उनको जरूरत पड़ती है कि रिलीजन के कंपेरिजन की, और उसके मकसद ये होता है कि वो तबलीग करें उन दूसरे रिलीजन, दूसरे मजाहब के अंदर, क्योंकि अगर नहीं उन्हें पता होगा दूसरे मजाहब का तो वो कैसे उनको प्रीच कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल ऐसे ही मिसाल है कि इन्होंने कहा कि जादू सीखो लेकिन इसका नुकसान है। अब वो कॉमन पीपल थे और वो उन्होंने उस नुकसान को तो एक तरफ रखा और उसको यूज करना शुरू कर दिया। तो इसी तरह वो सारे मजामीन और वो सारे सब्जेक्ट्स जो कि दिन में ये खर्चा हो तो उसको नहीं सीखना चाहिए, अगर सीखना हो तो बड़ी मोहतात होकर सीखना चाहिए। और यही सारी बातें एक्चुअली आजकल साइंस में भी पार्शली अप्लाई होती हैं, क्योंकि साइंस को पढ़ के कितने लोग अल्लाह ताला के मुनकर हुए, कितने साइंटिस्ट अल्लाह के मुनकर हैं और देहरी हैं और एथियस्ट हैं, और वो उस साइंस में उलझ कर रह गए, अल्लाह ताला के वजूद का इनकार कर दिया। तो अब साइंस के जरिए अगर तो अल्लाह से इंसान जुड़ रहा है और उसको पढ़ के आगे बढ़ रहा है, तो फिर तो उसकी अलाउंस होगी। अगर इंसान उससे गुमराह हो रहा है तो फिर उस सोचना पड़ेगा कि क्या मतलब कि ये सब्जेक्ट उसे अगर गुमराह कर रहे हैं तो फिर उसमें मोहतात होना चाहिए। तो इसका हल ये है कि इंसान जहां दुनिया का इल्म हासिल करे तो दीन का इल्म भी अब हासिल करे। जो साइंटिस्ट बन रहा है तो वो दीन में भी आगे बढ़े, वो सिर्फ छोटे मोटे मसाइल तक ना रहे बल्कि वो उसकी डेप्थ में जाए दीन की, कि ये कैसे अखज किए गए, इसका क्या, ताकि उसका ईमान वहां पे भी पुख्ता हो। ये जो गैप होता है दोनों उलूम का, दुनिया का इल्म तो बहुत आगे और दीन का इल्म बहुत पीछे, ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, ये कीदे को खराब करता है, ये मसाइल खड़े कर देता है। तो हल ये है कि इस गैप को नैरो किया जाए, जहां दुनिया का इल्म बहुत है तो दीन का इल्म भी बहुत हो, ताकि गैप नैरो हो और इंसान को ये दुनिया भी अल्लाह के कुर्बत का, अल्लाह की मोहब्बत का, अल्लाह के ताल्लुक का बायस बने। अब ये सारी बात जिक्र करने के बाद कि वो लोग जुदाई कराते थे मियां बीवी के जादू के जरिए से, अब फिर इंसान कमजोरी की वजह से इस चीज की तरफ चला जाता है कि अच्छा जादू होता है, जादू की हकीकत है, जादू है तो फिर इसका तोड़ भी होना चाहिए, यानी कि जादू से इंप्रेस होना शुरू हो जाता है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फौरन अगली आयत उतारी या अगली आयत मेंशन की कि वमा हुम बिज़ारीन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह व यतअल्लमून मा यज़ुर्रुहुम व ला यनफ़उहुम। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि वैसे ये वाज़े रहे कि वो इसके जरिए किसी को अल्लाह की मशीयत के बगैर कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। तो अल्लाह ताला ने वजाहत कर दी फौरन ये सारे वाक्य जिक्र करने के बाद कि ये सारा कुछ अगर वो कर भी रहे थे, जादू का असर जाहिर भी हो रहा था, मियाँ बीवी में सेपरेशन भी हो रही थी, तो ये कोई खुद से नहीं हो रही थी बल्कि अल्लाह की मशीयत उसके पीछे थी, अल्लाह का इरादा था। अल्लाह का इरादा ना हो तो ये कुछ नहीं हो सकता। ये वो तकदीर का पहलू है कि जिसको समझना चाहिए कि हर अमल के पीछे, हर होने वाली चीज के पीछे अल्लाह की मशीयत, अल्लाह का इरादा, अल्लाह ताला उस फेल का खालिक होता है जो कुछ हो रहा होता है। मतलब ये कि जो कुछ दुनिया में हो रहा है, अच्छा या बुरा, अल्लाह ताला की मर्जी से हो रहा है। अगर अल्लाह ताला की मर्जी और मशीयत और मंशा दरमियान से निकल जाए तो वो फिर कभी नहीं हो सकता। बस एक सवाल फिर बाद में रह जाता है कि फिर अल्लाह ताला बुरे को होने क्यों देते हैं, दुनिया में क्यों बुराई फैली हुई है, क्यों, अगर अल्लाह के इरादे और मंशा से हो रही है तो क्यों हो रही है, या कोई इंसान को तकलीफ होती है, कोई गम पहुंचता है तो क्यों पहुंचता है अगर अल्लाह के इरादे और मंशा से ही होता है। तो उस क्यों का जवाब ये है कि एक तो ये कि अल्लाह ताला ये दुनिया आजमाइश के लिए बनाई, जैसे अल्लाह ने मेंशन कर दिया कि मैंने आजमाइश के लिए उन फरिश्तों को भेजा था, तो आजमाइश के लिए, या दोनों इंसान को इख्तियार दिया जाते हैं और फिर वो किस चीज को चूज करता है ये उस देख से देखा जाता है, ये इसको चूज करता है, ये उसको चूज करता है। अगर वो गलत को चूज कर रहा है उसे रोका नहीं जाता, ये जबरदस्ती कि ना करो नहीं, बल्कि अल्लाह ताला अपनी मंशा से उसे होने देते क्योंकि आजमाइश है। जैसे इसकी एग्जाम्पल ये है कि जैसे एग्जामिनेशन हॉल हो और वहां पे एक इन्विजिलेटर हो, अब वो देखे स्टूडेंट गलत क्वेश्चन का आंसर कर रहा है, आंसर वो गलत कर रहा है, तो अब वहां पे वो ये नहीं करेगा कि उसको रोकना शुरू कर देगा कि नहीं ये तुम गलत कर रहे हो, इसको सही करो, क्योंकि वो 3 घंटे एग्जामिनेशन के हैं, वहां पे कोई उसकी हेल्प नहीं करेगा, वहां उसको करने दिया जाएगा जो कर रहा है, गो के वो देख रहा है देखने वाला इन्विजिलेटर या टीचर कि वो गलत कर रहा है, नहीं कोई भी उसको नहीं रोकेगा। तो इसी तरह अल्लाह ताला भी यहाँ देख रहे हैं गलत कर रहा है, तो मैसेजेस देते हैं अंबिया के जरिए से, औलिया के जरिए से, कुरान के जरिए से, लेकिन जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ के उसे नहीं रोकते। तो ये वाज़े रहे कि अगर कुछ हो भी रहा है तो अल्लाह की मर्जी से हो रहा है। अब यहां पे अगर इसको अप्लाई करें अपने माशरे के अंदर, अपनी जिंदगियों के अंदर, तो ये बात जहन में रहनी चाहिए कि कि ये बात बहुत आम हो गई कि जरा सा कुछ मिस है जिंदगी में हो तो फौरन इंसान का ज़हन जादू की तरफ जाता है, किसी ने मेरे पर जादू कर दी। हालांकि पहली बात तो ये कि ये इतना आम, मतलब कि इतना आसान चीज नहीं है कि हर चीज को उससे रिलेट कर देना, कि जो भी जरा सा हो, तबीयत खराब हुई, बीमार हुआ जादू, कोई फौत हो गया जादू, कोई कारोबार में ऊंच नीच आई तो वो जादू, कोई किसी को औलाद का मसला हुआ तो वो जादू, यानी कि हर चीज को जादू से रिलेट कर देना। तो फिर अल्लाह ताला क्या कर रहे, सोचने की बात है मुसलमान को, फिर अगर मैं हर चीज में ये सोचूं कि कोई जादू है तो फिर अल्लाह ताला की मंशा और मर्जी कहाँ है? यानी कि ये सारा कुछ तो अंबिया के साथ भी हुआ, उनकी भी औलाद नहीं होती थी, उनके साथ भी मसाइल थे जिंदगी के अंदर। अब वो तो कभी जिंदगी में ये नहीं कहते थे हमारे पर जादू हो गया, और सुलेमान अलैहिस्सलाम की कौम कितना कॉमन जादू करती थी, लेकिन इनकी जिंदगी में कभी आपको नजर नहीं आएगा या बहुत रेयर नजर आएगा कभी कहीं स्टेटमेंट आएगी किसी ने कोई जादू कर। तो पहली चीज को इतना कॉमनली रिलेट कर देना जादू के साथ, ये कमजोर ईमान की निशानी है, ये असबाब के पीछे जाने वाली बात है। मतलब क्या कि हर चीज को जो शख्स अल्लाह की नजर से होता देख रहा है वो हर वक्त दी नजर जाती है कि अल्लाह ताला ने ये कर दिया, अगर मेरे साथ जिंदगी में ये मसला हुआ अल्लाह ने ये कर दिया, और जो कमजोर होगा वो हर चीज को कहेगा फलाह ने ये कर दिया और फलाह ने ये कर दिया और फलाह ने ये कर दिया। तो पहली चीज को ये भी कुफर की तरफ ले जाती है, क्योंकि ये बात जहन में रहे कि चीजों को असबाब से रिलेट करना और यकीन करना कि फलाह ने ये किया है, ये कुफरिया जुमला है। पर हाँ, ये अगर साबित हो जाए किसी ना कि उसने जादू किया है तो तब भी ये कि अल्लाह की मर्जी से वो हुआ है, जिसने अल्लाह ने आका, ये सही अकीदा है, सीधा कह देना उसने किया है ये और यकीन होना कि उसने किया है, तो ये कुफरिया अकीदा है। बगल के अल्लाह की मर्जी से हर चीज होती है, पहली चीज। दूसरी चीज के दूसरे में बोहतान नहीं लगा सकते। मिसाल के तौर पे अगर जहन में आ भी रहा है कि जादू हुआ है तो आप ये नहीं कह सकते फलाह ने किया है, ये कैसे कहा जा सकता है? हत्ता कि इंसान खुद करते ना देखे, और ऐसा ऑलमोस्ट मतलब कि पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल सी चीज है कि इंसान खुद देखे कि वो कर रहे हैं। सिर्फ जन पे भी फैसले नहीं किए जा सकते कि एक बस शक है कि शायद उसने किया हो और उस पर इल्जाम लगा दे और इंसान उससे दुश्मनी कर दे और उसकी उसके दरपैर हो जाए, तो ये सारे के सारे हराम फेल है, क्योंकि ये बदगुमानी है, ये बुरा गुमान रखना है, ये सारी चीजों में अल्लाह ताला ने मना फरमाया। और बोहतान लगाना और फिर गीबत और फिर दुश्मनी और बुग्ज रखना, ये सारी हराम और गुनाह कबीरा है। तो ये अगली बात जो सही करने वाला चीज है, पहली चीज है हर चीज को जादू से रिलेट नहीं करना चाहिए, दूसरी चीज अगर कोई रिलेट कर भी रहा है तो उसमें अकीदा ठीक हो कि अल्लाह की मर्जी से हुआ है, तीसरा ये कि किसी पे कोई बोहतान ना लगाए। इस सारी अगर चीजों के साथ अगर कोई इंसान अपने जादू का इलाज कराना चाहे तो वो नूरी इल्म से, कुरान और हदीस के इल्म से अगर कोई माहिर सही बामल इंसान उसे मिलता है, कोई आलिम मिलता है, ऐसे शख्स मिलता है बामल हो, शरीयत सुन्नत पाबंद हो, कुरान और हदीस से बाहर वो कोई बात ना करता हो, तो फिर वो अलाउड है उसका इलाज कराना, उसका तोड़ कराना। लेकिन आमतौर पर माशरे में ऐसा नहीं होता, अक्सर पहली स्टेज पे हर चीज को जादू कह दिया जाता है, दूसरी ये कि ये समझा जाता है कि फलाह ने किया है, फलाह ने मेरा रिस्क बांध दिया, ये कुफरिया जुमला है। फलाह ने कैसे रिस्क बांध दिया? अल्लाह ने रिस्क देने का फैसला किया और फलाह ने रिस्क बांध दिया, अल्लाह की तरफ से रिस्क कम किया गया। तीसरी चीज जो जिसमें मोहतात होना चाहिए कि बोहतान लगाना, दुश्मनी करना, दूसरे पे एलिगेशन लगाना, ये तीसरी चीज जिसपे मोहतात होना चाहिए। और फिर अगली बात ये समझने की है कि जब इंसान शरीयत सुन्नत का पाबंद होता है तो ये जादू बहुत रेयरली असर करता है, अल्लाह ताला की हिफाजत होती है उस शख्स पे, उस पे फरिश्तों की हिफाजत होती है, अल्लाह ताला की हिफाजत होती है। तो कुरान पाक की तलावत का मामूल रखना, नमाजों की पाबंदी रखना, शरीयत और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारना, एक एक छोटे छोटे अमल सुन्नत के मुताबिक करना, फिर इसी तरह जो शैतानी काम घर के अंदर ना होना, मिसाल के तौर पे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और इस तरह की चीजें ना होना, फिर इसके बाद गंद से परहेज करना, नापाकी से परहेज करना, अगर नापाक हो रहा है तो फौरन पाक करे अपने आप को, कपड़ों को पाक करे, फिर इसी तरह खाने पीने की चीजों को ढक के रखना, फिर बर्तनों को धो के रखना रात को, तो ये वो आमाल हैं कि जिसके जो करता हो तो अल्लाह ताला उसकी शयातीन से हिफाजत करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि शैतान इतना ताकतवर है कि वो नूरानी आमाल करने वाले के को इजीली डिफीट कर दे और अपना असर डाल दे। इन सारी चीजों के असरात होते हैं और ये असरात इंसान को पहले में लिए होते हैं। अल्लाह ताला का पहरा होता है जो कुरान हर वक्त पढ़ रहा है, जिसके सीने में कुरान हो, जो बामल कुरान पे अमल करने वाला हो, वो इतना इजीली इन असरात के अंदर नहीं आ जाता। तो अगर कभी कोई असर फील हो तो अपने में नजर जाना चाहिए कि मैं क्या वीक हो गया हूँ इतने अमाल में या अपने अकायद में या अपनी चीजों में कि मुझ पे मेरे साथ ये मामला हो रहे। तो पहले तो वहां नजर जानी चाहिए, फिर कहीं और नजर जानी चाहिए, और फिर जो स्टेप्स बता दिए कि हर चीज को जादू से लेट नहीं करना और दूसरे बोहतान नहीं लगाना और अल्लाह की तरफ से समझना, और फिर अगर कोई जरूरत पड़े तो लास्ट स्टेप पे किसी पामल और सुन्नत शरीय सुन्नत के पामन शख्स से जाके इलाज कराना। तो ये है सीक्वेंस अगर कुछ महसूस हो जिंदगी के अंदर। और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आखिरी बात इस वाक्य के अंदर ये फरमाई कि वो यतअल्लमूना मा यज़ुर्रुहुम वला यनफ़अहुम, मगर वो ऐसी बातें सीखते थे जो उनके लिए नुकसानदेह थी और फायदेमंद नहीं थी। तो ये वो इल्म है कि जो जिसकी बात की गई कि कई बार वो नुकसान उसमें ज्यादा होता है, फायदा कम होता है, तो वो मोहतात होना चाहिए उस इल्म को सीखने में जिनमें ये जादू भी है। और फिर फरमाया कि वलकद अलिमू लमन इश्तराहु वमा लहू फिल आखिरति मिन खलाक वला बिअस मा शरौ बिही अन्फुसहुम लौ कानू यालमून। और वो ये भी खूब जानते थे कि जो शख्स इन चीजों का खरीदार बनेगा आखिर में उसका कोई हिस्सा नहीं होगा। तो उनके ये बात ये पता थी कि ये हमारी शरीयत में मना है, अल्लाह की तरफ से मना है, आखिर के लिए हमारा नुकसान है, लेकिन दुनिया की मोहब्बत इंसान पे ऐसी हावी होती है वो कुछ नहीं देखता, वह उसके दरपे हो जाता है उस चीज के। और हकीकत यह है कि वो चीज बहुत बुरी थी जिसके बदले उन्होंने अपनी जानें बेच डाली। काश कि इनको इस बात का हकीकी इल्म होता। तो अल्लाह ताला का ये बहुत बुरा सौदा है कि इंसान जो दुनिया की मोहब्बत में शरीयत के खिलाफ काम कर जाता है, तो ये घाटे का सौदा होता है। लेकिन मसला क्या है वो आखिरी बात, आखिरी स्टेटमेंट, आखिरी जुज के अंदर, आखिरी आयत के अंदर अल्लाह ने मेंशन की कि वलौ कान यालमून, काश ये इंसान जानता होता। होता क्या है कि जानता तो है, जैसे अल्लाह ने पहली बात कह दी वो जानते थे खुद, फिर आखिर में कहे काश वो जानते। क्या मतलब, ये दोनों ऑपोजिट स्टेटमेंट क्यों है? मतलब कि कई बार इंसान जानता होता है, उसके इल्म में होती है बात, लेकिन अमल उसके खिलाफ होता है, इसलिए क्योंकि हकीकी तौर पे वो नहीं जान रहा होता। अगर कोई भी शख्स, अकलमंद शख्स, जिसको ये पता हो कि बिजली का क्या झटका होता है, कैसे वो जानलेवा होता है, उससे पूछें कभी उसने जिंदगी में जान के कभी बिजली की तार को हाथ लगाया, तो हमेशा आंसर होगा नो, कि नहीं लगाया। जिसको पता हो जहर क्या चीज होती है, कैसे जानलेवा होती है, उससे पूछें कभी जहर चखा है आपने? उन्हें कभी नहीं चखा। क्यों? क्योंकि उसे इल्म यकीन है कि होगा ऐसा, मैं मर जाऊंगा। जब इंसान को इल्म यकीनी इल्म नहीं होता तो कई बार वो जो थोड़ा बहुत इल्म है उस पर अमल नहीं कर रहा। तो आखिरत के मामले में इंसानों का यही हाल है अक्सरियत का, कि उन्हें इल्म होता है कि सब कुछ होने वाला है। जैसे मुसलमानों को सब कुछ पता है, नमाज पढ़नी चाहिए, धोखा नहीं देना चाहिए, सच बोलना चाहिए, आखिर में इन सब का नुकसान है। लेकिन माशरे का अगर अमूमी हाल देखें तो वो ऐसा ही है जैसे उन्हें कुछ पता नहीं है। लेकिन अगर उनसे सर्वे करें, उनसे इंटरव्यू करें, उन्हें सब पता होगा। तो भाई इल्म और अमल में गैप क्यों है? एक्चुअली ये गैप है जो अल्लाह ताला ने मेंशन किया कि ये काश इसका हकीकी तौर पे जानते कि क्या कर रहे। अब ये जो गैप को फिल करना है ना इल्म और अमल के, जो उनकी अकल में इल्म है और जो जो हकीकी इल्म है, इस गैप को फिल करने का नाम तज़किया होता है। कि ये गैप क्यों है? ये गैप सिर्फ इसलिए दुनिया की मोहब्बत, ये गैप सिर्फ इसलिए इंसान नफ्स परस्त है, ख्वाहिश परस्त है, इसलिए वो इल्म पे अमल नहीं करना चाहता, इसलिए वो अपने आप के डिनाइल फेज में चला जाता है कि होगा तो देखी जाएगी। तो इस तरह की जो चला जाता है, एक्चुअली उसकी दुनिया की मोहब्बत, नफ्स की मोहब्बत, ख्वाहिशात की मोहब्बत उसे मजबूर कर रही है, और उनको निकालने का नाम तज़किया नफ्स। तो तज़किया नफ्स इतना अहम है कि वो इंसान को एक्चुअली आखिरत के अंदर कामयाब करवाता है, दुनिया के अंदर उसकी ये दोगलेपन को खत्म करता है। और उसके लिए क्या तरीका है? उसके लिए जो तरीका मुशायख ने बताया, क्योंकि ये बात जहन में रहे कि जिस तरह हर दौर के फिकी मसाइल बदलते रहते हैं, यानी कि ये दीन क्यामत तक है फिकी मसाइल बदलते रहेंगे, क्योंकि नई नई इजादात हो रही हैं, नई नई मसाइल निकल रहे हैं, तो कौन उनको हल करेगा? फुकाहे कराम हल करते हैं, जो कुरान और हदीस फिक का इल्म रखते हैं वो उसको हल करते हैं। इसी तरह जो इंसान के इल्म और अमल में फर्क है, यानी कि जो तस्किए नफ्स, जिसके लिए तस्किए नफ्स की जरूरत है, अब उस तस्किए नफ्स को कौन करेगा? क्योंकि इंसान की रूहानी बीमारियां भी बदलती जा रही हैं। जो रूहानी बीमारियां आज हैं, आज से 100 साल पहले भी नहीं थी, 1000 साल पहले तो दूर की बात है, तो इसको कौन आज हल करेगा? तो इस दौर के मशाइख हल करेंगे। जिस तरह फिकी मसले को इस दौर के फुकाहा हल करते हैं, इसी तरह इस दौर के रूहानी बातनी मसाइल को, तस्किए नफ्स को इस दौर के मशाइख करेंगे, इस दौर के स्टेटस के मुताबिक और बीमारियों के मुताबिक, मसलों के मुताबिक। तो इसलिए कहा जाता है कि उनसे ताल्लुक जोड़ के इस चीज़ को हासिल किया जाए, इसकी इसलाह की जाए, वरना इस तरह तो जिंदगी गुजरती जाएगी। इंसान कहेगा कुछ और, करेगा कुछ और, खुद जानता है कि मैं कहता कुछ और हूँ, करता कुछ और, मेरी महफिलें कुछ और होती हैं, तन्हाइयाँ कुछ और होती हैं, मेरा जाहिर कुछ और है, मेरा बातिन कुछ और, इस इकरार खुद करता है, लेकिन उसकी इसलाह की फिक्र नहीं होती। तो इसलिए तज़किया नफ्स को कुरान पाक ने फर्ज करार दिया, कद अफलहा मन तज़क्का, कि इसको कर लो अमल, क्योंकि अल्टीमेटली अमल पे पूछ होनी है, और अमल नहीं होगा तो इंसान पे उसके मुताबिक फैसला कर दिया जाएगा जन्नत या जहन्नम का। तो ये है सारी तज़किया नफ्स की लॉजिक और मेहनत की असल है। तो अल्लाह ताला हमारा तज़किया फरमा दे, हमारे अंदर से बाती बीमारियां खत्म कर दे, और अकायद को भी ठीक कर दे, जैसे अल्लाह ताला चाहते हैं कि हम जो हर चीज़ को गैर से रिलेट करते हैं वो भी अल्लाह ताला हमारे ठीक कर दें। और इसके लिए भी जो मेहनत है, यानी कि अपने कीदे को ठीक करने की मेहनत, अमल को ठीक करने, उस पे भी हमें लगा दें। वाखर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। थोड़ी देर के लिए मुराकबा कर लें, आंखों को बंद कर लें, सर को झुका लें, जो कुछ दुनिया में है उससे हट कट के अल्लाह की याद में डूब जाएं। जब इंसान अपने अंदर झांकता है, उसे अपनी हकीकत नज़र आती है, अपने मन के दरीचे को खोने, अपनी असल तस्वीर देखे। इंसान की असल तस्वीर यही है कि वो जानता है कि मैं गुनाह करता हूँ, वो जानता है कि मैं गुनाह का आदी हूँ, लेकिन वो टालता जा रहा है इसकी इसलाह को, इसके ठीक करने को। तो ये अपने आप को समझाएं कि इसको ठीक कर लूँ, वरना मैं ही मुश्किल में गिरफ्तार हो जाऊँगा, मैं ही मुसीबत में फंस जाऊँगा। तो जिक्रुल्लाह, अल्लाह की याद है वो चीज़ जिससे कल्ब सही होता है। कल्ब जिक्र के दो तरीके हैं, एक जुबान से, एक कल्ब से। तो कल्बी जिक्र है आंखों को बंद करना, कल्ब पर तवज्जो करना, और ये सोचना कि अल्लाह की रहमत आ रही है, दिल में समा रही है, मैं दिल कह रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا الله پاک آپ ہی دونوں جہانوں کے مالک ہیں، خالق ہیں، تمام تعریفیں، تمام بڑائیاں، تمام عظمتیں، تمام خوبیاں، تمام اچھائیاں، تمام پاکیاں آپ کے لیے ہیں. یا اللہ پاک آپ نے ہمیں ایمان دیا، یا اللہ پاک آپ نے جسمانی نعمتیں بھی دیں، روحانی نعمتیں بھی دیں یا اللہ پاک، لیکن یا اللہ پاک سستی ہماری طرف سے ہوئی کہ یا اللہ پاک جسمانی نعمتوں کا بھی استعمال نہ سیکھا. یا اللہ پاک ایمان کیسے بچانا ہے، کیسے بڑھانا ہے، کیسے پھیلانا ہے، اس محنت کو بھی نہ سیکھا. یا اللہ پاک جس کی وجہ سے ایمان کمزور ہوتا گیا اور ایمان کی کمزوری کی وجہ سے یا اللہ پاک تیرے غیر پہ نظر جانی شروع ہو گئی، چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں یا اللہ پاک تیرے غیر کی طرف توجہ کا جانا، یا اللہ پاک تجھ سے مدد کی امید نہ ہونا، غیروں سے مدد کی امید ہونا، یا اللہ پاک تجھ سے شکوے ہونا، لوگوں کی دیوان پہ تعریفیں ہونا، یا اللہ پاک یہ سارے ایمان کی کمزوری کی نشانی ہے. یا اللہ پاک محض اپنے لطف و کرم سے ابھی بھی زندگی باقی ہے، ہمیں یا اللہ پاک حقیقی ایمان نصیب فرما دے. یا اللہ ایمان کی حلاوت نصیب فرما دے، ایمان کی حقیقت نصیب فرما دے. یا اللہ پاک ایمان کامل نصیب فرما دے. یا اللہ پاک اپنی ذات کا ادراک نصیب فرما دے، اپنی ذات کی حقیقت نصیب فرما دے، اپنی صفات ہم پہ کھول دے. یا اللہ پاک اپنی قوت اور طاقت اور قدرت ہم پہ کھول دے، ایسی ہم پہ یہ معرفت ساری کھول دے. یا اللہ پاک تیرے غیر سے ہماری نظر ہٹ جائے. یا اللہ پاک تیرے غیر سے ہمارا تعلق ٹوٹ جائے، تیرے غیر سے ہمارے دل کی محبت ختم ہو جائے، تیرے غیر سے ہمارے دل کا خوف ختم ہو جائے. یا اللہ پاک اپنی رحمت سے یا اللہ پاک اپنے سے کبھی تعلق ہمیں نصیب فرما دے. یا اللہ پاک جو گناہ ہو گئے اس ایمان کی کمزوری کی وجہ سے، دن میں یا رات میں، کھل کے یا چھپ کر، اپنی رحمت سے سب کو معاف فرما دے. یا اللہ پاک وہ گناہ کبیرہ تھے یا صغیرہ تھے، یا اللہ پاک سب کو اپنی رحمت سے معاف فرما دے. یا اللہ پاک حقوق تیرے حقوق میں سے تھے یا حقوق العباد میں سے تھے، اپنی رحمت سے سب کو معاف فرما دے. یا اللہ پاک جو لوگ زندہ ہیں ہم نے ان کے حق ضائع کر دیے، اپنی رحمت سے یا اللہ پاک ان کو اپنی طرف سے اجر عظیم دے کر ہماری خلاصی فرما دے. اور یا اللہ پاک جتنی زندگی باقی رہ گئی اس میں ہر انسان کا صحیح طور پہ حق ادا کرنے والا بنا دے. یا اللہ پاک محض اپنے لطف و کرم سے عبادات میں ہمیں کاملیت نصیب فرما دے، اخلاقیات میں ہمیں کاملیت نصیب فرما دے، عقائد ہمارے صحیح فرما دے. یا اللہ پاک اسی طرح جو معاشرہ تمام معاملات ہیں اس میں بھی ہمارے رویے اور عمل کو ٹھیک کر دے. ہمارے ذہن سے ساری کنفیوژنز اور یا اللہ پاک جو غلط فہمیاں ان کو دور کر دے، دین ہمارے اوپر واضح کر دے. یا اللہ پاک شرح صدر نصیب فرما دے دین کے اوپر. یا اللہ پاک سنت کی اہمیت ہمارے اوپر کھول دے، ہمیں سر سے پاؤں تک سنت کا پیروی کرنے والا بنا دے. یا اللہ پاک ظاہر باطن کو سنت کے مطابق ڈھال دے. یا اللہ پاک اور اس دین کی جو برکات ہیں، جو اس کی یا اللہ پاک اس کے ذریعے سے جو تیری رحمت ہم پہ جو اترتی ہے وہ بھی ہم پہ اتار دے، وہ برکات ہم پہ ظاہر کر دے، دنیا کے مسائل ہمارے ختم کر دے. یا اللہ پاک اس کی برکتوں سے ہمارے دنیا اور آخرت سارے مسائل ختم کر دے. یا اللہ پاک جتنے لوگ مشکلوں، پریشانیوں، غموں میں مبتلا ہیں، یا اللہ پاک اپنی رحمت سے سب کی مشکلیں، پریشانیاں آسان فرما دے. یا اللہ پاک جو اولاد کی وجہ سے پریشان، یا اللہ پاک ان کو اولاد صالح نصیب فرما. یا اللہ جن کی اولاد ہے، یا اللہ پاک ان کی اولادوں کو نیک و صالح بنا، ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یا اللہ پاک دل کا سکون بنا ان کو. یا اللہ پاک ہر قسم کی برائی سے محفوظ فرما، بری صحبتوں سے محفوظ فرما، برے لوگوں سے محفوظ فرما، بری عادتوں سے محفوظ فرما، ان کی صحیح تعلیم و تربیت کا انتظام فرما، صحیح تعلیم و تربیت کرنے کا ڈھنگ ہمیں سکھا دے، اور صحیح طور پہ ان کی تعلیم و تربیت یا اللہ پاک کر دے. یا اللہ پاک جو لوگ صحت کی وجہ سے پریشان، اپنی رحمت سے یا اللہ پاک ان کو صحت نصیب فرما. جو روحانی یا اللہ پاک پریشانیوں میں مبتلا ہیں، یا اللہ پاک شہوت، غصے، تکبر وغیرہ میں، یا اللہ پاک اپنی رحمت سے سب کو روحانی شفا نصیب فرما. یا اللہ پاک جو مال کی وجہ سے پریشان، ان کو رزق حلال نصیب فرما. یا اللہ پاک ساری عمر قرض سے محفوظ فرما، مرض سے محفوظ فرما. یا اللہ پاک دوسروں کی डर के धक्के खाने से महफूज फरमा, बेसहारा होने से महफूज फरमा। या अल्लाह पाक, मैं सारी उम्र अपनी या अल्लाह पाक रहमतों का सहारा हमें नसीब फरमा। या अल्लाह पाक आफियत वाली ज़िंदगी हमें नसीब फरमा, आफियत और ईमान वाली मौत नसीब फरमा, आफियत के साथ कब्र में रहना नसीब फरमा, आफियत के साथ हशर का मामला फरमा। या अल्लाह पाक आफियत के साथ जन्नत फिरदौस में हमें दाखिल फरमा। या अल्लाह पाक महज अपने लुत्फ़ो करम से तीनों हरम की हिफाजत फरमा, जमी इस्लामी ममालिक की हिफाजत फरमा, खसूसन पाकिस्तान की अंदरूनी और बैरूनी खदशात से उसे महफूज फरमा। या अल्लाह पाक, या अल्लाह पाक जहाँ जहाँ मुसलमान कमज़ोर हैं अपनी रहमत से या अल्लाह पाक उनको सहारा नसीब फरमा, उनकी इज्जत जान माल आबरू की हिफाजत फरमा। या अल्लाह पाक महज अपने लुत्फ़ करम से हमें भी सारी उम्र जालिमों के शर से महफूज फरमा, और या अल्लाह पाक हमें जुल्म करने से भी महफूज फरमा, हम पे जुल्म होने से भी महफूज फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, वतुब अलैना इन्नका अंतत तवाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व सहाबिही अजमईन, बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।